अध्याय 3 कुषाण कालीन आर्थिक जीवन। कृषि। इस काल में कृषि की स्थिति लगभग वही थी जो मौर्य काल में चली आ रही थी। समाज में वैश्यों की प्रधानता अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक थी। वे विभिन्न प्रकार के उद्योगों के साथ कृषि में भी दक्ष थे एवं कृषि संबंधी सारी औपचारिकताओं से भली प्रकार परिचित थे। इस समय कृषि योग्य भूमि को दो कोटियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर एक क्षेत्रिक, जहां फसल खेत में बोते थे, तथा नंबर दो आश्विक, जहां फसल वनों में बोई जाती थी। इससे लगता है कि किसी भूमि के विस्तार के लिए वनों को भी काटने की व्यवस्था थी। संभवतः जनसंख्या की वृद्धि को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया हो। इसी दृष्टि से ब्राह्मणों को अनुर्वर भूमि ध्यान में दी जाती थी कि वे उसको तोड़कर किसी योग्य बनाए। खेती में सिंचाई की सुविधा देना राजा का नैतिक कर्तव्य था, इसलिए ऐसी भूमि को चुना गया था जहां वर्षा के अभाव में किसी असंभव थी। इसे केतु कहते थे। इसके लिए राज्य की ओर से कृत्रिम सिंचाई के साधन जुटाए गए थे। अतः सिंचाई के दो साधन थे, दृष्टि एवं यांत्रिक। खारवेल के संबंध में ज्ञात होता है कि उसने कलिंग में विनष्ट तालाबों का केवल जीर्णोद्धार ही नहीं कराया, पर नंद राजाओं द्वारा खोदी गई पुरानी नहर तनसुली का विस्तार कर उसे नगर के भीतर भी पहुंचा दिया। रुद्रादमन ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार कराया तथा उसे विस्तृत कराया कि लोग उससे सिंचाई कर सके। उस पर होने वाले व्यय के लिए जनता पर अलग से कर का बोझ भी नहीं बढ़ाया तथा साथ ही बेगार भी नहीं किया गया। सामूहिक प्रयास से भी तालाबों के खोदने का चलन था। किसी कार्य हलों की सहायता से की जाती थी। एक विवरण के अनुसार आनंद नामक गृहपति ने अपनी खेती 500 हलों की सहायता से करता था। इसके अतिरिक्त कुदाल, फावड़ा, असियही, हसिया तथा सूप पकत्तर, सूप आदि का प्रयोग करते थे। स्पष्ट है कि हसिया से खेत काटा जाता था तथा मड़ाई करके निकाले गए अनाजों को सूप से साफ करते थे। तैयार किया हुआ अनाज विभिन्न प्रकार के संग्रहों में रखा जाता था, जिनके ज्ञात नाम है खवाह, पल्लग, कुंभी, मुख, संग, कुंघी, मुख, आचार आदि। यहाँ अनाज में गेहूं, जौ, धान, मसूर, मूंग, गन्ना आदि प्रमुख उत्पादन थे। इसके साथ कपास, लवंग, पीपल आदि की खेती होती थी। फलों में आम, सेब, अंगूर, अंजीर, अनार आदि विशिष्ट थे। यद्यपि इस समय बाह्य आक्रमण भारत पर बराबर होते थे, पर किसी की उन्नति में वे बाधक नहीं थे। व्यापारियों द्वारा भूमि दान में दी जाती थी, राजा की भूमि दान देते थे। यह कर मुक्त होता था तथा इसका उपयोग स्वेच्छानुसार किया जा सकता था। कृषि सुरक्षा के नियम बनाए गए थे। किसी औजारों की चोरी सामान्य रूप से होती थी। जो लोग मेड़ को तोड़ देते थे या गलत प्रकार का बीज बेचते थे, वे शासन द्वारा दंडित किए जाते थे। उद्योग धंधे। राजकीय नियंत्रण से इस समय उद्योग स्वतंत्र थे। उद्योगों की एक लंबी तालिका इस समय के ग्रंथों में मिलती है। दीर्घ निकाय में 24 उद्योगों का मिलिंद पन्नों में 75 उद्योगों की चर्चा है, जिनमें से 60 विविध विशेषताओं वाले थे। चीन के ऊनी वस्त्र उद्योग के साथ स्वाभाविक वस्त्र उद्योग ऊन का उद्योग विकसित था। स्पष्ट रूप से उन्नतशील वस्त्र व्यवसाय का यह द्योतक है। विशेषता थी कि सूती वस्त्र उतने जीने और हल्के होते थे कि इनकी तुलना सांप के केचुल या दूध के उबलते समय उससे निकलने वाले भाप से की गई है। मथुरा में एक विशेष प्रकार का वस्त्र बना था जिसे शतक कहा जाता था। इसी से मनु ने बुनकरों पर कर लगाने की सलाह दी है। दूसरे विकसित उद्योगों में प्रमुख थे धातु की बनी हुई सामग्रियां तथा वेश कीमती पत्थरों जैसे पन्ना, नीलम, पोखराज, हीरा, मोती आदि का व्यवसाय। कुंभकारी, गांधिक, तेली, मछुआ, बढ़ई, मालाकार, कुंभकार आदि के भी व्यवसायों में की प्राय चर्चा की गई है। इन व्यवसायियों ने अपना संगठन बनाया था जिसे श्रेणी, नियम या निकाय कहते थे। इसका अर्थ उद्योग विषय को प्रोत्साहित करना, उसके लिए प्रशिक्षण देना था, विक्रय की व्यवस्था करना था। इसके साथ ही जिन व्यवसायों के पास अधिक धन होता था उनसे धन सूद पर लेती थी तथा अधिक सूद पर दूसरे व्यवसायियों को देकर व्यवसाय की सहायता करती थी। व्यापार। इस समय आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार पनप रहे थे। इनमें सबसे उन्नतशील था विदेशी व्यापार। तत्कालीन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि रोम के साथ भारत का व्यापारिक संपर्क बड़ा ही विकसित हो चुका था। नंबर एक, आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार के लिए देश के भीतर सड़कों का जाल बिछा था। इनके द्वारा व्यापारी आते जाते थे तथा वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। ये मार्ग व्यापारिक केंद्रों में से जुटे थे। दक्षिण भारत में व्यापारिक केंद्र थे पैठन नगर, नासिक, कहटिक, जुन्नर आदि। तत्कालीन पतन भी व्यापारिक केंद्र ही थे, क्योंकि व्यापारिक सामग्रियां पहुंचाई जाती थी, जैसे भरूच, सोमार, कल्याण आदि। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। इनका सबसे बड़ा चांदी का बना सिक्का स्वर्ण था, जो भारत में 35 करसापड़ के बराबर होता था। इससे छोटा चांदी का कुषण नामक सिक्का था। सबसे छोटा सोने तथा चांदी का सिक्का था करसापड़, जो सामान्य प्रचलन में था। नंबर दो, विदेशी व्यापार। इस समय का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से रोम से किया जाता था। यह व्यापार सामुद्रिक मार्ग से होता था, क्योंकि हिपल्लस नामक किसी यूनानी ने 45 दिनों में भारत और रोम के बीच यातायात का मार्ग ढूंढ निकाला था, जो पहले 3 माह में पूरा किया जाता था। साथ ही रोम में साम्राज्य की भी स्थापना हो चुकी थी, जिससे व्यापारिक मार्ग अब पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थे। भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग ने भी इसको बल दिया। यह व्यापार भारतीय वस्तुओं का बंदरगाहों से होता था। उत्तर तथा दक्षिण भारत के उद्योगों से उत्पन्न माल यहाँ इकट्ठे होते थे, जो जहाजों द्वारा बाहर भेज दिए जाते थे। इनमें पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं भेगी कच्छ, प्रतिष्ठान, नरय, सोयारा, कल्याण, नीलकंठ, नैलिसंड आदि। पूर्वी तटीय बंदरगाह थे मसूलिया, कोष्टक में ससूली पत्तन तथा गंगे। भारत से रोम को सुगंधित पदार्थ, मुक्ता, रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि का निर्यात होता था। यहाँ इन वस्तुओं की इतनी मांग थी कि ये भारत की अपेक्षा 100 गुने मूल्य पर बिकती थी, क्योंकि वहाँ के लोग विलास प्रिय थे। इसमें भारत प्रति वर्ष रोम से 5 करोड़ से अस्तर कमा लेता था। यह अपव्यय देखकर रोम की सरकार ने भारत से होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनके अतिरिक्त लौंग, मसाले, सुगंधिया, हाथी दांत के सामान, औषधियाँ, रेशमी वस्त्र आदि का भी बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। नंबर 3, भारत में रोमन व्यापार। भारत में रोमन व्यापार का प्रमाण यह मिलता है कि यहाँ रोमन सिक्के लंका, मदुरा, बम्बई, मैसूर, मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर आदि से प्राप्त हुए हैं। गुजरात, मालवा, राजस्थान आज की खुदाई में बहुत से मिदमांड रोमन कला के मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि रोम के बर्तनों के साथ भारत में भी उसी नमूने के बर्तन मिलने लगे थे। कुषाण राजाओं के कुछ सिक्के रोमन सम्राट अगस्टस के अनुकरण पर बने हैं तथा मिर्जापुर, इलाहाबाद, कन्नौज, चुनार की खुदाई में भी रोमन सिक्कों की प्राप्ति इसको पुष्ट करता है। नंबर 4, पूर्वी विश्व से भी भारत का व्यापार इस समय होने लगा था। यह जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था। चीन की सामग्रियां भारत में बिकने के लिए वर्मा से होकर आती थी तथा कुछ अफगानिस्तान तक जाती थी। निश्चय ही वर्मा से भी भारत का व्यापारिक संपर्क रहा होगा, तभी वहां से होकर विदेशी माल भी भारत में आयात होता होगा। मैसूर में चीन का सिक्का मिलना तथा भारतीय जहाजों द्वारा चीनी व्यापारियों का व्यापार करना भी इस संपर्क को पुष्ट करता है। बौद्ध ग्रंथों में स्वर्ण भूमि और भारत के बीच यात्रा का उल्लेख भी इसी तथ्य को स्पष्ट करता है। जावा और सुमात्रा से भी भारत का इस समय व्यापारिक संपर्क था।